समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar and a very good afternoon, Vaishnavi. Vaishnavi, today is 25th of September and we observe it as an Antyodaya Day, which is being observed across the country today to mark the birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay. The term Antyodaya means the upliftment of the last person or the rise of the most disadvantaged. It reflects Pandit Deendayal Upadhyay's philosophy of serving the last person in society, with a day dedicated to promoting awareness and action for the welfare of the most disadvantaged. Antyodaya Divas honors his efforts to improve the lives of the underprivileged and less fortunate. Across the country, government and non-government organizations mark the occasion by organizing seminars, workshops and community service initiatives, which is focused on education, healthcare and skill development in line with Upadhyay's vision of inclusive growth. We will discuss more on Panditji's personality in our last segment, but for now, let's update you with the news headlines at this hour.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। श्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया।
प्राइम मिनिस्टर मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्यूरेट्स मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 1,22,000 करोड़ रुपीज इन राजस्थान।
भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
Israeli military continues ground offensive in Gaza City. Over 8 people killed during operation in last 24 hours.
और BCCI ने एशिया कप के दौरान अनुचित गतिविधियों को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई।
And Vaishnavi, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Swachhata Hi Seva campaign.
Swachh Bharat ka irada kar liya humne desh se apne vaada, ye vaada kar liya humne Swachh Bharat ka irada kar liya humne desh se apne vaada.
We are here today to talk about something that affects all of us, something simple yet powerful, and that is cleanliness. Cleanliness is not just about keeping our surroundings tidy, it's about creating a healthy, safe and beautiful environment for ourselves and for our future generations.
बिल्कुल अनुजा, साफ सफाई की आदतें हमें बीमारियों से बचाने, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो जरा सोचिए, जब कूड़े को यूं ही खुले में छोड़ दिया जाए तो आखिर क्या होता है? यही होता है कि मक्खियों, मच्छरों और तथा बदबू को अपनी ओर केंद्रित करता है और इससे भी बदतर, ये बीमारियों का प्रजनन स्थल बन जाता है।
And now imagine a place where the streets are clean, the air is fresh and the surroundings are litter free. Doesn't that sound peaceful, Vaishnavi? It sure does. And the good news is we all can make that happen by doing simple things like throwing waste in the dustbin, using reusable bags.
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या कूड़ा कचरा फैलाने से बचें और अपनी कक्षाओं, घरों और आस पड़ोस को साफ रखें। श्रोताओं, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 एक ऐसा अभियान है जो स्वच्छता को नागरिकता के सामूहिक उत्सव में बदल देता है।
Yeah.
2017 में शुरू किया गया ये पहल स्वच्छ भारत मिशन की आधारशिला बनकर उभरा है.
Held annually, the campaign rallies citizens across the country to step out and take ownership of their surroundings. Swachhata Hi Seva 2025, themed around Swachhotsav, blends the joy of celebration with the seriousness of responsibility. The campaign began on the 17th of September and is culminating on 2nd of October. This 15-day movement is uniting millions of hands and hearts across India in high-impact Swachhata drives.
ये अंत्योदय से सर्वोदय के सिद्धांत को नई पहचान देता है. ये अभियान अंतिम छोर तक के समावेशन पर जोर देता है और ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत के गांव और कस्बे सम्मान, स्वास्थ्य और स्थिरता के साथ आगे बढ़ें.
As part of Swachhata Hi Seva in this year, the massive nationwide voluntary Shramdam drive, Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath, is taking place today. Across cities and villages, people are coming together in large numbers to participate in the Shramdan.
Lekin Anuja, ye Shramdan aakhir kya cheez hai?
Shramdan means voluntary labor, offering our time and effort without expecting anything in return. Giving just 1 hour of our day can go a long way in building a cleaner, healthier and more responsible community. Whether it's picking up litter, cleaning a school compound, a park, a roadside area or even planting trees, we are contributing to something greater than ourselves.
तो श्रोताओं, रोज अपनी दिनचर्या से एक घंटा अपने आसपास की सफाई करके सुनिश्चित करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जिस पर हमें गर्व हो, क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी काम में अपना समय और मेहनत लगाते हैं तो यही सच्ची देशभक्ति है. श्रमदान सिर्फ एक घंटे का काम नहीं है, बल्कि ये बदलाव का एक घंटा है. आइए ऊर्जा, एकता और एक स्वच्छ कल के मिशन के साथ शुरुआत करें. आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि सिर्फ एक घंटा सफाई करने का नहीं, बल्कि स्वच्छता का आदत, स्वच्छता को एक आदत, एक सोच और एक जीवन शैली बनाने का.
Right, and making our surroundings cleaner doesn't require big actions, Vaishnavi. Just consistent small efforts that add up over time, like always throw garbage in a dustbin, avoid leaving wrappers, plastic bottles or any waste on the ground, carry it until you find the bin. Reduce, reuse, recycle, of course, all the things. Reduce the use of single-use plastics. We should be reusing bags, containers and water bottles. We should think of recycling paper, plastic and other materials through proper channels.
सामुदायिक श्रमदान कार्यक्रमों में भाग ले, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ मिलकर स्थानीय पार्कों या सड़कों की सफाई के लिए छोटे छोटे अभियान चलाएं, अपने घर, कक्षा और आसपास के वातावरण से शुरुआत करें. दूसरों का इंतजार ना करें, बल्कि अपनी मेज, शेल्फ या बगीचे की नियमित रूप से सफाई करें.
ऑफ कोर्स plant and we must plant trees and also protect trees. Plants reduce pollution and beautify spaces. We should take care of the greenery around all of us. We should educate others also into this, and especially the children, about the importance of cleanliness.
जी बिल्कुल, और ये सदैव सुनिश्चित करें कि सूखा और गीला कचरा हमेशा अलग ही फेंकें.
And of course, keeping the environment clean offers a wide range of benefits. We should keep our surroundings clean, which help reduces all types of pollution, which protects ecosystems and biodiversity. It also protects natural habitats and prevent harm to animals and marine life as well.
श्वसन संबंधी समस्याओं, एलर्जी और जल जनित रोगों को कम करता है. स्वच्छ वातावरण मच्छरों और बीमारियों का कारण बनने वाले जीवाणुओं के प्रजनन को रोकता है.
Don't you think, Vaishnavi, that clean communities are more pleasant to live in and promote outdoor activities?
जी बिल्कुल.
So it also boosts tourism. If we keep our public spaces clean, it attracts our visitors and enhances a city's reputation as well.
श्रोताओं, दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें, क्योंकि लोग अक्सर वही करते हैं जो वो देखते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव की शुरुआत खुद से करें.
Under the Swachh Bharat Mission across India, different states are writing their own chapters of change. And these success stories of Swachh Bharat Mission showcase innovation and community spirit. The Amarnath Yatra 2025 was not only a spiritual journey but also a model of sustainability. With over 4 lakh devotees trekking to the holy cave in the Himalayas, the pilgrimage turned into a zero landfill plastic-free mission. A robust waste management system processed nearly 11.6 metric tons of waste daily. Over 1,000 twin bin stations, 65 garbage collection vehicles and 1,300 Safai Mitras kept the route clean round the clock. Single-use plastics were eliminated from langars, replaced by cloth and jute bags.
Shrutao, mere paas aapke liye aisi hi सफलता की एक और कहानी है। असम के बाढ़ग्रस्त मोरी गांव जिले में बोरचिला गांव की 60 महिलाओं ने अत्यधिक जलकुंभी की समस्याओं को अवसर में बदल दिया है और पर्यावरण अनुकूल हस्तशिल्प तैयार करके अब उनमें से प्रत्येक को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की कमाई हो रही है। जो कभी एक गंभीर समस्या थी, नदियों का गला घोंट रहा था और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों में बाधा डाल रहा था, वे अब आजीविका और सम्मान का स्रोत बन गया है। ये पहल दर्शाती है कि कैसे पूर्वोत्तर राज्य पारिस्थितिक चुनौतियों को स्थायी आजीविका में बदलकर स्वच्छता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।
Really, so inspiring. So let's be responsible citizens and set an example for others through good practices of keeping our environment clean. A deeper sense of swachhata recognizes the interconnectedness of human well-being and a healthy planet as well.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन एक क्रांति के रूप में देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा है, वे अद्भुत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र आज उसी क्रांति के एक हिस्से के रूप में स्वच्छता दिवस मना रहा है।
स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में सारे देश के जन जन तक पहुंचा है, वह अपने में अद्भुत है। स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है।
The Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi and Chief of Air Staff Air Chief Marshal AP Singh were also present on the occasion.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर स्वच्छता का प्रत्येक कार्य स्वच्छ भारत के प्रतीक हमारे साझा कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया।
Union Minister of Jal Shakti C.R. Patil joined the cleanliness drive at Kalindi Kunj Ghat in the national capital, and talking to media, Mr. Patil said, on the occasion of Pandit Deen Dayal Upadhyay's birth anniversary, the government is carrying forward its resolution to clean the Yamuna River. Mr. Patil appealed to the citizens to pledge for the cleanliness of the country. Minister of State for Health and Family Welfare Pratap Rao Jadhav joined the cleanliness drive at Nirman Bhavan. So, Swachh Bharat Mission has moved far beyond its early symbolism. What began as a call to clean streets is now shaping how India approaches public health, women's dignity and environmental responsibility. From garbage dumps and back lanes to crowded railway stations, river banks and degraded lands, cities are mapping and tackling the very spaces that most visibly affect our urban life. The message is clear. Cleanliness is not only about removing waste, it is about reclaiming beauty in everyday surroundings.
स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत लाखों लोग स्वच्छता महोत्सव के अवसर पर एकजुट हो रहे हैं। ये अभियान हमें याद दिलाता है कि स्वच्छता कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय संस्कृति है, और यदि इसे इसी भावना के साथ जारी रखा जाए तो ये स्वतंत्र भारत की सबसे स्थायी विरासतों में से एक बन सकती है, जो वास्तव में विकसित भारत 2047 की नींव रखेगी।
समृद्धि से सजाओ धरती, यही है अब तमन्ना। हर गांव शहर हो स्वच्छ, यही है बस कामना। समृद्धि से सजाओ धरती, यही है अब तमन्ना। हर गांव
Let's make Swachhata a lifelong practice to make a better world around us. Change starts from us, from simple behavioral changes. Cleanliness is not just a duty, it is a responsibility.
बिल्कुल, ये हमारी अपनी एक दूसरे की और धरती माँ की जिम्मेदारी है। आइए आज हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने, स्वस्थ रहने और जागरूकता फैलाने का संकल्प लें, क्योंकि एक स्वच्छ दुनिया ही एक बेहतर दुनिया है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
एंड इन दिस सेगमेंट लेट्स गो फर्स्ट टू चेन्नई। द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इकोसिस्टम फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैज ब्रॉट इन अ वेव ऑफ मेजर्स टू एम्पावर द यूथ एंड इंक्रीज द कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स। वी हैव अ रिपोर्ट ऑन दिस।
Education and skills are two important aspects of every child and both are considered equal and complement each other. Education means literacy and skills does not mean literacy but that which adds value other than education. Earlier, vocational education was meant to be of a different category but which was undermined. But the present government has given it a different turn to the aspect of skill development. Dropouts from schools and colleges can opt for various courses which will sharpen their skills and render them a life-saving assistance. Training centers have been functioning to deliver quality training programs which are certified and assessed by different agencies. In an exclusive interview to Akashwani Chennai, Dr. Vinita Agarwal, executive member of the NCVT, said that the trainer, the center and the skill program is well scrutinized for the benefit of the young people.
We have not only state government bodies, you have universities, school boards who are coming forward. Then you may have some centers of excellence. Like for instance, now even defense, all the organizations in defense have also been recognized as awarding bodies, because whatever work or whatever training they are doing as part of their defense career, that is being recognized as skill and they are being given certificates, so that once they come out of their jobs, they will be able to find good civil jobs because their training is pretty rigorous.
The government is driving towards Viksit Bharat and it is more certain that India will become a self-reliant country in 2047, and this is a step towards it. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
और अब बिहार की ओर रुख करते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में आज से चार दिवसीय साहित्य उत्सव उन्मेष की शुरुआत हुई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में साहित्य अकादमी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 550 से अधिक साहित्यकार, कला संस्कृति से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि उन्मेष अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरों को मंच प्रदान करता है।
इस उन्मेष में विशेष बात ये है कि हमने भारत की 24 भाषाओं के अतिरिक्त 90 बोलियों को भी शामिल किया है। ये वो भाषाएं हैं जिनका अभी तक लिपि भी नहीं बनी है, लेकिन वाचिक परंपरा में उनके पास विपुल भंडार है। इसी प्रकार से हमने कलम से लेके कैनवस और एक तरह से रंगमंच से लेके सेलुलाइट, जितनी भी अभिव्यक्ति के माध्यम है, उनके बड़े रचनाकार, लेखक, कवि, उपन्यासकार, विद्वान, उन सभी को आमंत्रित किया है। भारतीय भाषाओं के रचनाकारों के साथ 15 अलग अलग देशों के रचनाकार भी हमारे बीच आए, ताकि वो अनुभव कर सकें कि भारतीय साहित्य की कितनी बड़ी संवेदना परिधि है।
तो वहीं संस्कृति मंत्रालय की अपर सचिव अमिता प्रसाद साराभाई ने कहा कि साहित्य अकादमी इस कार्यक्रम के माध्यम से पाठकों और लेखकों को करीब लाने का काम करता है।
जैसे कि आपको ज्ञात है, भारत सरकार कई बोलियों, कई भाषाओं को उनको साहित्य अकादमी के थ्रू उनके हम बुक्स की ट्रांसलेशन कराते हैं, और बहुत सारी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारी कोशिश रहती है कि जितनी ये भाषाएं जो इतनी सारी ऑलमोस्ट अब विलुप्ति कगार पर हैं, उनको भी हम, जिनकी कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं हो, उसमें भी साहित्य अकादमी काम करता है और उनको बढ़ावा देने की कोशिश करता है।
And now we take you to Sikkim, where the old Silk Route Ecotourism and Adventure Park at Gnathang was inaugurated yesterday. So to know more about it, let's go to our correspondent there.
The old Silk Route Ecotourism and Adventure Park at Gnathang in Pakim district was inaugurated yesterday by Cooperation and Rural Development Minister Arun Kumar Upreti as chief guest, with MLA Pamin Lepcha as guest of honor. The project has been developed by the Gnathang Multipurpose Cooperative Society. The park, located at 12,800 feet, features an emporium, museum, a replica of the historic Silk Route, adventure activities and model of Jaluk and Jalepla. The museum displays Yak Harder's artifact, British War Memorial, story of Nathula Heroes, the Doklam standoff, and cultural exhibit. Addressing the event, Minister lauded the cooperative society's efforts, assuring government support for sustainable livelihoods and tourism promotion in border area. Pamin Lepcha praised the community-led model as a milestone for rural tourism, while senior official highlighted Sikkim's growing role as a tourism hub. With Mainak Chatterjee, Diliram Dulal, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
And now in some sports news, the Board of Control for Cricket in India, BCCI, has officially filed a complaint against Pakistani cricketers Sahib Zada Farhan and Haris Rao for their inappropriate actions during the Asia Cup Super 4 encounter on 21st of September. The Indian team has demanded strict action against both the players for the misconduct. During Pakistan's innings opener, Sahib Zada Farhan celebrated his half century by holding his bat like a gun. The complaint has been lodged with the International Cricket Council and match referee Andy Pycroft.
दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर फोर में आज बांग्लादेश का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। कल भारत ने सुपर फोर में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया और एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।
And now coming to the business news, benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty ended more than 0.5% down, extending losses for the fifth straight session. Both the indices had started the day marginally lower, with the sell-off intensifying during the last hour of the trade. The Sensex shed 556 points, or 0.68%, to close at 81,160, while Nifty dropped 166 points, or 0.66%, to settle at 24,891. In the global crude oil market, Brent crude was trading 0.3% down at $69.10 per barrel, and WTI crude was also trading 0.4% down at $64.73 per barrel when reports last came in.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we will bring you the story of the great freedom fighter Prafulla Chandra Sen, who spent over 10 years in various jails between 1930 to 1942 for anti-British activities.
Today, the 25th of September, marks the death anniversary of a man who was a die-hard nationalist. Prafulla Chandra Sen always remained committed to Mahatma Gandhi's philosophy of grassroots democracy and a self-reliant rural economy. He also served as the Chief Minister of West Bengal from 1962 to 1967.
Sen was born in village Senhati in Khulna district of Bengal on 10th April 1897. After graduating, he wanted to move to England for higher studies. But his ambitions changed after hearing Mahatma Gandhi's speech in 1920. Influenced by Gandhi's speech, Sen abandoned his plans of studying abroad and joined Mahatma's call for mass non-cooperation movement against the British.
In 1923, Sen moved to Arambagh in the Hooghly district, which became his laboratory for Gandhian experiments on Swadeshi and Satyagraha. Arambagh was an underdeveloped and malaria-infested area of Bengal where Sen worked hard for its betterment. For his efforts, Sen was affectionately called the Gandhi of Arambagh. He was elected to the Bengal Assembly from Arambagh in 1944 and was deputy leader of the opposition.
In 1948, he was inducted by then Chief Minister Dr. Bidhan Chandra Roy into the West Bengal Cabinet as Minister of Agriculture. After Roy's death in 1962, Sen became West Bengal's third chief minister. To his last, he remained a bachelor with an undemanding, selfless and principled lifestyle. Sen died in Kolkata on 25th September 1990, but his conviction towards the society is a lesson for all of us. India is forever indebted to the selfless service and sacrifice of freedom fighters like Prafulla Chandra Sen.
Today, we are also celebrating the birth anniversary of freedom fighter and former Deputy Prime Minister of India, Chaudhary Devilal. He also served as the Chief Minister of Haryana. He was born on this day in 1914 in Teja Khera village of Sirsa district in Haryana to Shugna Devi and Lekram Sehag. A follower of Mahatma Gandhi, he was merely 15 years old when he was drawn towards the independence movement. As a 16-year-old, he participated in a demonstration by Lala Lajpat Rai in 1928. And now continuing with this, we also pay tribute to the Deen Dayal Upadhyay, Pandit Deen Dayal Upadhyay, known by the epithet Panditji, the Indian politician who is a proponent of integral humanism ideology and leader of the political party Bharatiya Jan Sangh, whose ideas on integral humanism and Antyodaya continue to influence Indian governance. Numerous public figures, including Prime Minister Narendra Modi, have paid tribute to Pandit Deen Dayal Upadhyay on his birth anniversary today. The great son of Mother India and the pioneer of integral humanism, in a social media post extending his homage, Mr. Modi said that his nationalist ideals and the principle of Antyodaya, which guided the nation towards prosperity, will continue to be invaluable in the development of a prosperous India. He believed that every village should become self-reliant and produce for its own needs. Upadhyay's dedication to social welfare and justice was demonstrated by his belief in Antyodaya, or the upliftment of the last person in society.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान विचारक, लेखक, पत्रकार और भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्र को एकात्म मानववाद जैसे अद्वितीय विचारधारा थी। उनका मानना था कि विकास का आधार केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए।
Right, and we also pay tribute to Rukma Bai, who was an Indian physician and feminist. She is best known for being one of the first practicing women doctors. Pioneer of women's rights, Rukma Bai was a child bride who famously refused to live with her marriage, leading to a legal battle, and highlighted the issue of child marriage and the right to consent. With debates around Hindu versus English law, internal reforms versus external reforms, respecting ancient customs and traditions, the final judgment made her free from her marriage. And she studied at London School of Medicine for Women and returned to India in 1894 to become India's first practicing female doctor.
Rukma Bai na sirf doctor thi balki ek sahasi samaj sudharak bhi thi.
Right, and today we move forward with paying tribute to Shripati Pandit Aradhyula Balasubramanyam. The winner of multiple awards over a 50-year career, the 74-year-old singer died of COVID-19-related complications last year. During the COVID-19 times, Balasubramanyam was a recipient of 6 national awards, including the Padma Bhushan and the Padma Shri.
करो ना मुझे प्यार आते जाते खसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार वो पहली नजर हल्का सा.
And today we also remember Satish Dhawan on his birth anniversary, who was an Indian mathematician and aerospace engineer. He served as the chairman of ISRO from 72 to 84 and is often regarded as the father of experimental fluid dynamics research in India. Born in Srinagar, Dhawan was educated in India and further on in United States. And he's greatly regarded as the man behind APJ Abdul Kalam as well. And we also have Firoz Khan, an actor with a majestic aura, born to an Afghan father from Ghazni and an Iranian mother with Persian ancestry. Class and elitism were writ large, not just on his face, but on everything that he did. Is having his birthday today, Firoz Khan. He was a good actor, if not excellent, and was known as the Clint Eastwood of India. We have a dialogue in his voice.
आप समझते हैं कि मटके के जरिए हजारों लाखों घर तबाह करके चंद गरीबों के मुंह में रोटी डाल दी तो आप धर्मात्मा बन गए. शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 आदमियों के जख्मों पे मरहम रख दिया तो आप धर्मात्मा बन गए. स्मगलिंग के जरिए देश को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर चंद यतीमों के आंसू पोंछ दिए तो आप धर्मात्मा बन गए? नहीं पिताजी नहीं। अगर आपकी नजरों में धर्म है तो भगवान जाने देश और धर्म का क्या हो।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए हमें परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का।
नमस्कार, नमस्कार।